आत्मभावना लेक्चर नंबर 6। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम नमः सिद्धेश्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वर्चायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह आत्मभावना नामक पुस्तक है जो समाधि तंत्र के ऊपर जो गुरुदेव कान्हा स्वामी के प्रवचन है उसको लिखाया गया है। अभी हम आए हैं समाधि तंत्र निकालना है आपको और पृष्ठ संख्या है 9। तीसरा नंबर का श्लोक हमने देखा था। पहले श्लोक में सिद्धों को नमस्कार किया है, दूसरे में अरिहंत उनकी माने की महिमा सहित उनको नमस्कार किया था। अब यहाँ तीसरे श्लोक में ये बताते हैं कि मैं अपनी शक्ति सहित जो विविक्त आत्मा का कथन करूँगा। कैसे करूँगा? तो पहले स्वानुभव से मैं जानूंगा और बाद में श्रुत द्वारा, अनुमान द्वारा, हेतु द्वारा मैं आपको उसका उपदेश करूंगा। यानी उसकी किसको करूंगा? हाँ, जिसको मोक्ष की इच्छा है, अतीन्द्रिय सुख की भावना है, ऐसे जीवों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। हम टीका पढ़ रहे थे, अन्वयार्थ हमने देख लिया था 9 पृष्ठ पर समाधि तंत्र के। फिर से शुरुआत से पढ़ेंगे टीका। हवे इष्ट देवता ने नमस्कार कर्या पछी हूँ कहीश। शूँ कहीश? विविक्त आत्मा ने अर्थात कर्ममल रहित जीव स्वरूप ने कहीश। यानी मैं विविक्त आत्मा का कथन करूंगा। विविक्त ने क्या? कर्ममल से रहित ऐसे आत्मा का, जीव का स्वरूप मैं बताऊंगा। कैसे कहूंगा? केवी रीते कहीश? यथाशक्ति, मेरे शक्ति के अनुसार। यानी आत्मशक्ति नु उल्लंघन कर्या वगर कहीश। शू करीने कहीश? तो कहते समीक्षा करीने। यानी तेवा आत्मा ने, यानी विविक्त आत्मा ने सम्यक प्रकारे जानीने कहीश। मैं स्वानुभव पूर्वक ये बताऊंगा। शा वड़े? कया साधन वड़े? तो कहते श्रुत द्वारा। इसके लिए उन्होंने श्रुत का एक उदाहरण दिया है जो कुनकुंदाचार्य ने लिखा है। एगो में सासदो आत्मा आदा नान लंसन लखनो सेसा में बाहिरा भावा सौवे संजोग लखना। ये देख लेगा अपने कन्फर्म नियम सार 102 नंबर की गाथा है वो। ये उन्होंने उद्धरण दिया है। ऐसे श्रुतों में जो आगम में जो बात बताई है उसी को मैं बताऊंगा, ये कह रहे हैं। अभी वो इस प्रकार है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ये आपका हमारा आज का विषय यहाँ से शुरू होता है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। शरीरादि आत्मा थी भिन्न छे कारण के तेवो भिन्न लक्षणों थी लक्षित छे। कोई पदार्थ भिन्न है ये कैसे जाना? ये पदार्थों को उसके लक्षणों को द्वारा हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो मेरा लक्षण जुदा है और शरीर का आदि में अन्य भी ले ना सकते, तो उनका लक्षण जुदा है। लक्षण के द्वारा हम पदार्थों को पहचान सकते हैं। अनेक मिले जुले पदार्थ होते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा भी यहीं पर है, उसी प्रदेशों में शरीर की भी रचना हुई है। तो कहते उनको भिन्न कैसे पहचानना? अनादि से तो भिन्नता ख्याल में नहीं आ रही थी, इसीलिए कि जहाँ मैं पहने का एहसास है वहीं पर शरीर दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भिन्नता ख्याल में नहीं आ रही। अब कहते उसका लक्षण जानो और आत्मा का लक्षण जानो तो भिन्नता पहचान जाओगे। हम खाते पीते तो बहुत होशियार रहते हैं, उसमें क्या क्या डाला है हाँ सब मालूम पड़ता है। तो यहाँ कहते शरीरादि आत्मा थी भिन्न छे, कारण के ते होते हुए ने शरीरादि यानी वे भिन्न लक्षण थी लक्षित छे, जेवो भिन्न लक्षणों थी लक्षित छे ते वो बनने एक बीजा थी भिन्न छे, जिनका लक्षण जुदा जुदा है वे पदार्थ भी जुदे जुदे हैं। जेम जल अने अग्नि एक बीजा थी भिन्न छे तेम, कि जल का लक्षण क्या है वो प्रवाही है वो तो शीतल है वगैरह वगैरह, और अग्नि का लक्षण क्या है उष्ण है, है? आत्मा ने शरीर बनने भिन्न लक्षणों थी लक्षित छे, अने ते बनने नु भिन्न लक्षणों थी लक्षितपणु अप्रसिद्ध नहीं एटले प्रसिद्ध छे, क्योंकि जीव का लक्षण जानना 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 ये उसका प्रकट लक्षण है, और शरीर का तो पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण उसके वो भी प्रकट लक्षण है, कारण के आत्मा उपयोग स्वरूप थी उपलक्षित छे, उपलक्षित छे ने वो लक्ष्य यानी उसको लक्षण उसका बनाया। उपयोग स्वरूप का अर्थ क्या होता है, ये ज्ञान दर्शन उपयोग उसको उपयोग कहते हैं, जानन देखन का जो कार्य है कार्य यानी अवस्था में हो रहा है उसको हम उपयोग कहते हैं। तो ये छोराला में भी आता है ना, चेतन को है उपयोग रूप तत्वार सूत्र में क्या लिखा है, हाँ रूमा हाँ तत्वार सूत्र में क्या सूत्र है बताया दोनों ने। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है तो उपयोग उसका लक्षण है, अने शरीरादिक तेनाथी विपरीत लक्षण वाला छे, यानी शरीर में उपयोग लक्षण नहीं है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसका लक्षण है। समाहित अंतःकरण थी, समाहित एटले एकाग्र थयेला, अने अंतःकरण एटले मन, एकाग्र थयेला मन वडे ने एका मन की एकाग्रता द्वारा सम्यक प्रकारे समीक्षा करीने एटले जाणीने किसको, विविक्त आत्मा को, जो भिन्न है उसको जाना है, लक्षण से उसे नक्की कर दिया है, जाणीने एटले अनुभवीने कहीश, जानना तो पर पदार्थों का भी होता है, यहाँ अनुभव करना है वो स्व है उसका अनुभव करना है, अनुभव करने ने आनंद का अनुभव वहां होगा, कि विविक्त आत्मा को नक्की करने पर और उसके सन्मुख होने पर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, इसलिए कहते अवनुभवी ने कहिश एवो अर्थ छे, यानी केवल ग्रंथ में पढ़ लिया और आपको बताया ऐसा नहीं कर रहे, आचार्यों ने सम्यक प्रकारे स्वानुभव के द्वारा अनुभव करके फिर उसको बताया है। हूँ कोने तेवा प्रकार ना आत्मा ने कहिश, किसको बताऊंगा मैं, कहते आचार्य तो कैवल्य सुखनी स्पृहा वालाओं ने, स्पृहा ने इच्छा, जिसको कैवल्य ने ये जो कैवल्य ने मोक्ष को भी कहेंगे, देखो कैवल्य सुख की स्पृहा वालाओं को, यानी कैवल्य अर्थात सकल कर्मों से रहित तथा जे सुख उपजे उसको कैवल्य कहा, यानी सिद्धों के जो सुख अतीन्द्रिय अनंत सुख उत्पन्न होता है तेनी स्पृहा एटले अभिलाषा करनाराओं ने कहीश, कैवल्य अर्थात विषयोथी उत्पन्न नहीं थयेला एवा सुखनी, क्योंकि जो विषयों की सुख की इच्छा वाले हैं तो उनको तो इसमें कोई रस रुचि नहीं है, तो जिनको ऐसे मोक्ष सुख की इच्छा है अभिलाषा है जो मोक्ष के इच्छुक है उनको मैं कहूंगा, अथवा कैवल्य अने सुखनी स्पृहा वालों ने कहीश, कैवल्य सुख का दो अर्थ किया, कैवल्य ही सुख है या कैवल्य और सुख है, इसे दो अर्थ किया, ये यहाँ तक अपने ये टीका हमने पढ़ी। अभी आते हैं 10 नंबर के पृष्ठ पर, समाधि तंत्र के भावार्थ पढ़ेंगे। श्री पूज्यपाद स्वामी प्रतिज्ञा रूपे कहे छे के, देखो हमेशा ग्रंथ के आदि में पहले मंगलाचरण होता है और वहाँ क्या बताने वाले हैं उसकी भी बात, ग्रंथ का विषय भी बताते, प्रतिज्ञा पूर्वक बताते और किसके निमित्त से कहते हैं वो भी बताया जाता है, किस लिए बताएंगे वो भी कहेंगे। तो कहते कि प्रतिज्ञा रूपे कहे छे के हूँ श्रुत वड़े युक्ति अनुमान वड़े अने चित्तनी एकाग्रता वड़े, वड़े ने उसके द्वारा, श्रुत के द्वारा ने आगम परंपरा जो चली आ रही है, जो सर्वज्ञ भगवान से जो आगम परंपरा चली आई है, आगम के द्वारा जानकर, पहली बात युक्ति अनुमान वड़े जानकर, यानी युक्ति और अनुमान के द्वारा जानकर, युक्ति और अनुमान का अर्थ होता है, युक्ति का अर्थ होता है प्रमाण नय आदि के द्वारा जानकर, अनुमान यानी ज्ञान का ही भेद है, लक्षण के द्वारा यहाँ ये लक्ष्यभूत होना चाहिए इसे अनुमान लगाते हैं हम, तो उससे जानकर अने चित्तनी एकाग्रता बढ़ी। पहले आगम के द्वारा हमने आत्मा का, शुद्धात्मा का, विविक्त आत्मा का स्वरूप जाना, आचार्यों ने, पूर्वाचार्य ने लिखे रखा है। फिर ये आचार्य स्वयं कह रहे कि मैंने श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना है, पहली बात। दूसरी बात युक्ति और अनुमान से नक्की किया है, जिसको हम तत्व निर्णय करेंगे। पहले तो आगम से जाना, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय किया, और चित्तनी एकाग्रता वड़े शुद्धात्मा ने यथार्थ जानी ने, यानी स्वसन्मुख एकाग्र होकर, चित्तनी एकाग्रते मन को एकाग्र करके, शुद्ध आत्मा को यथार्थ जानकर, तथा तेनो अनुभव करीने, यानी इतने होने पर उसका अनुभव होता है, तो अनुभव करके। ये समाधि तंत्र पुस्तक है आपके हाथ में, उसमें 10 नंबर का पृष्ठ है, ऊपर से जो भावार्थ लिखा है ना, आपकी कौन सी पुस्तक है, आपका कौन सा पेज 11 है, पुरानी पुस्तकों में किसी में 9 है किसी में 11 है, आप ऐसा देखना श्लोक जो 3 जहां समाप्त होता है और उसकी टीका हो जाती है, उसके बाद उसका भावार्थ है। आपके कौन सा पेज है, 9 है, हाँ तो मंदा बेंगियर आपकी पुस्तक सेम है, हाँ जब नहीं मिलेगा तो उनके पूछ के हम बताएंगे आपको, 4 एडिशन। हाँ देखिए भावार्थ अभी हमने जो सुना ना, तो क्या श्रुता बड़े ने आगम के द्वारा, युक्ति अनुमान द्वारा ने अपने बुद्धि से निर्णय किया, फिर चित्त की एकाग्रता से शुद्धात्मा को यथार्थ जानकर और उसका अनुभव करके, फिर निर्मल अतिनिय सुखनी भावना वाला भव्य जीवों ने, अभी किसको बताऊंगा, तो जिसको ये सुख की, निर्मल अतीन्द्रिय सुख की जिसकी भावना है, उसकी जिसकी अभिलाषा है, ऐसे जीवों को, भव्य जीवों को मेरी शक्ति अनुसार शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। यहाँ लिखा है ना गुजराती में, मारी शक्ति अनुसार शुद्ध आत्मानु स्वरूप कहीश विशेष आगम्मा आत्मानु स्वरूप। आगम में तो बहुत जगह, वो पूरा आगम ही भरा है ना, आगम आत्मा के स्वरूप से भरा हुआ है, उसमें से कुछ उद्धरण यहाँ देंगे। कहूं छे के एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी। अरे देखो क्या कहते हैं, हूँ एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ। अभी यहाँ रुक जाना तो कितने द्रव्य सामने आ जाएंगे भाई, जो कह रहे कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सदा ने नित्य कायम रहने वाला हूँ और मैं अरूपी हूँ, इतना ही कहेंगे तो कितने द्रव्य सामने आएंगे कि ऐसा बताने वाले हैं। हाँ कौन से कौन से, अच्छा बोल तो बोलो ना, नाम बोलो ना उसके। हाँ, जीव कहेगा मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा हूँ, अरूपी। हाँ, फिर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब कहेंगे मैं ऐसा। आगे क्या लिखे, इसलिए ज्ञान दर्शन मय करे, बाकी सब पीछे हट गए, है ना, क्योंकि ज्ञान दर्शन वाला यही एकमात्र है। हाँ, बाकी तो एक है, शुद्ध है, सब सब एक ही है, शुद्ध ही है, सदा वाले है, और रूपी द्रव्य तो पांच है, पर ज्ञान दर्शन वाला तो एक ही है, जीव द्रव्य। कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं आए, यानी अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, ये मेरा स्वरूप है, ये कह रहे। देखो, ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमे लो आत्मा जाने छे के, यानी उस रूप परिणमेला, इन्हें वो सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि निश्चय थी हूँ एक छू, शुद्ध छू, दर्शन ज्ञान मैं छू, सदा रूपी छू, कई पण अन्य परद्रव्य, कोई यानी परमाणु मात्र, यानी छोटे में छोटा परमाणु उतना भी पण मारू नथी, ए निश्चय छे। ए समय सार में गाथा 38 बताई है, इन्हें आगम में ऐसे ऐसे आत्मा का स्वरूप बहुत अलग अलग गाथाओं के द्वारा बताया गया है। अब युक्ति अनुमान उसके बारे में बताएंगे। शरीर ने आत्मा एक बीजा थी भिन्न छे, कारण के ते बनने ना लक्षण भिन्न भिन्न छे, यानी ये न्याय बता रहे हैं। न्याय से हमको ये जानना है ये दो भिन्न क्यों हैं, क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग हैं। दोनों सेम एक ही होते तो ये लक्षण भी सेम होने चाहिए थे, वे की वे होने चाहिए थे। तो यहाँ नीचे दो नंबर जो लिखा है, लक्षण किसको कहते हैं, लक्षण की परिभाषा क्या है, नहीं समझे, लक्षण का लक्षण क्या है लक्षण की डेफिनेशन क्या है, लक्षण किसको कहना, तो यहाँ लिखा है। देखो, घना मरेला पदार्थों माती, यानी अनेक मिले जुले पदार्थों में से कोई पदार्थ ने जुदो करनार हेतु ने लक्षण कहते, यानी उसको अलग बताने वाला जो कोई हेतु है वहां पर, जो कोई चीज है, उसको हम लक्षण कहेंगे। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये बात लिखी है, यानी ये न्याय की भाषा है, लक्षण किसे कहना, फिर लक्षण के कितने भेद है वगैरह, अभी हम उसमें नहीं चले जाएंगे। आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वालो छे, लक्षण ऐसे ही होने चाहिए क्या, वो तो उसमें पाए जाना चाहिए, एक बात, उसके सभी भागों में कवर करना चाहिए, एक्स्ट्रा में नहीं पाए जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ जीवों में तो होगा और कुछ में नहीं होगा, तो भी नहीं, इसको शास्त्रीय भाषा में कहना है तो उसमें तीन दोष से रहित होने चाहिए लक्षण। कौन से तीन दोष है मालूम है आपको लक्ष्मी जी, लक्षण में कौन से दोष नहीं चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, ये तीनों ही नहीं होने चाहिए। अतिव्याप्ति यानी जैसे अभी हमने देखा ना, एक है, शुद्ध है, सदा है, अरूपी है, वो तो अतिव्याप्ति हो जाएगा क्योंकि अन्य भी द्रव्य में पाए जाते हैं। अभी ज्ञान दर्शन में तो ठीक है, यदि हम कहेंगे केवल ज्ञान ये जीव का लक्षण है तो क्या होगा, तो सारे छद्मस्थों को जीव नहीं कहना पड़े, थोड़े में ही वो कवर हुआ उसका लक्षण, या मति ज्ञान वाले हैं जीव ऐसा कहेंगे तो क्या है, केवल ज्ञान ही हट जाएंगे। इस तरह से ये लक्षण वैसे होने चाहिए कि जो दोष से रहित हो। तो कहते आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वालो छे, ज्ञान दर्शन ये लक्षण जो है वो सभी जीवों में, संसारी में भी और सिद्ध में भी, एक बात, सभी जीव तो कवर किए, जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, और उसका वो तो बिल्कुल उसका लक्षण ही है, जो जानते देखते वो जीव है, असंभव की बात ही नहीं यहाँ पर। यदि हम स्पर्श रस गोरा कालाक जीव कहेंगे तो वो असंभव दोष हो जाएगा।
एक प्रश्न पूछना
चाहता हूं,
हाँ हाँ, ये हमने अभी जीवों का उपयोग लक्षण बताया और उसमें कौन सा दोष है, कौन सा दोष है ये पूछा, तीन दोष बताए ना अभी आपने,
हाँ,
बोलो ना फिर तो बोलो ना, कोई दोष नहीं कर रही, निर्दोष लक्षण है इसका। ये प्रश्न से घबराना नहीं, हाँ आत्मा ज्ञान दर्शन लक्षण वालो छे अने शरीरादि तेनाथी विरुद्ध लक्षण वाला छे, अर्थात अचेतन जड़ छे, यानी उसमें ये ज्ञान दर्शन लक्षण है ही नहीं है, वो अचेतन है, यानी विरुद्ध लक्षण हुआ ना, ये चेतन है वो अचेतन है। जेमना लक्षण भिन्न भिन्न होय छे ते एक ते बधा एक बीजा थी भिन्न होय छे, ये तो परस्पर विरुद्ध लक्षण है ना, एक चेतन है और एक चेतन अचेतन है। जेम के जलनु लक्षण शीतलपणु अने अग्निनु लक्षण उष्णपणु छे, एम बन्नेना लक्षण भिन्न छे, तेथी जलथी अग्नि भिन्न छे। जेम अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं, सोना अने चांदीनो एक पिंड होवा छता तेमा सोनू तेना पीला शादी लक्षण बने, पीला से ने वो पीलापन, पीलेपन से वो भिन्न है, उसका लक्षण भिन्न है। अने चांदी तेना शुक्लादि लक्षण वड़े, शुक्ल ने वो सफेद पना उसका लक्षण है, बनने जुदा छे एम जानी शकाय छे। क्या कहा यहाँ तो, ऐसे वो धातु को गर्म करके मिक्स कर दिया कि तो हम कहीं नहीं कितने कैरेट का सोना है, ऐसा कह रहे। तो सोना की अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसमें जो सोने का अंश है वो उसका तो पीलेपन से हम पहचानेंगे, उसमें चांदी का अंश जो जुदा है वो उसका सफेद आदि उसका लक्षण है। यानी दो धातुओं को मिलाने पर मिलकर वो एक रस गर्म करके एक बेक कर दिया, फिर भी दोनों को हम लक्षणों से जुदा जान सकते पहचान सकते। एम जानी शकाय छे तेम जीवने कर्म नो कर्म, कर्म तो दिखाई नहीं देते, नौकर्मी जो शरीर जो तो वो तो दिखाई दे रहा है, फिर भी दोनों ही लक्षण से जुदे हैं। एक क्षेत्र हुआ छता, क्या कहते हैं, जहां जीव है उसी के प्रदेशों में कर्म भी स्थित है और वहीं पर शरीर की भी यानी नौकर्म की भी रचना होती है, क्योंकि जीव कहीं से मरकर आता है वहां तो कर्म था ऑलरेडी, नए परमाणु शरीर के ग्रहण होते हैं और वहां शरीर की रचना हो जाती है, यानी उन्हीं प्रदेशों में होती है, उससे भिन्न कहीं यहाँ जीव बैठा और वहां शरीर का रचना कर दिया ऐसा तो नहीं है, है ना। तो कहते एक क्षेत्र हुआ छता, जैसे हम जुदे रह रहे हैं और हमने कोई घर बांधा, वो तो जुदा है ना अस्तित्व उसका, वैसा नहीं है शरीर उसी उसी क्षेत्र में है। हाँ, तो एक क्षेत्र हुआ छता, यानी एक ही क्षेत्र में कर्म भी है, नौकर्म यानी शरीर भी है और वहीं पर जीव के प्रदेश है, सभी जुदे जुदे हैं। तेमना लक्षणों वड़े तेओ एक बीजा थी भिन्न जानी शकाय छे, उसको जानने का तरीका एक हमारे हाथ में एक साधन बता दिया, उनके लक्षण जानो और ये पदार्थ भिन्न ये पहचानो, हमको जुदा करना नहीं वो जुदे ही है इसको जानना है। पहले में पहले हम किसी चीज को जो जुदा करते हैं ना, ये शरीर से भिन्न करने की कोशिश करते हैं। नीचे तीन जो समय सार गाथा 27-28 ये सब समय सार में से ही बताई बात। वड़ी नीचे का पैराग्राफ, अभी हर एक में अपने अपने पैराग्राफ और वो लाइन देख लो नंबर। अंतरंग राग द्वेषादि विकारी परिणामों पण, क्या कहते हैं, अभी शरीर से तो बात कर दी लक्षण से, कर्म की भी बात की, कर्म तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कर्मों के उदय में जो कोई बातें बनती है वो तो अनुभव में आती है। जीव कर्मों को जानता नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता और वो बातें तो चल रही है उसके, तो मान लेता है कोई ईश्वर है, कोई दूसरा है कि ये मेरे करने वाला है, ये उसकी मान्यता है, उनको भी ये लक्षण से जान सकता है। अभी राग द्वेषादि की बात है, राग द्वेषादि तो जीव की पर्याय में है, तो अंतरंग राग द्वेषादि विकारी परिणामों पण, ये विकारी परिणामों की विकारी पर्याय जो है, पर्याय में विकार है उसकी बात है, वे पण वास्तव में ये खरेखर आत्माना ज्ञान लक्षण थी भिन्न छे, हमें तो लक्षण के द्वारा पहचानना है, तो जीव को ने हमें क्रोध आया, वो क्रोध सबको जान रहा है ना, क्रोध किसी को नहीं जान। ये क्रोध आया ये भी ज्ञान नहीं जाना, क्रोध ना स्वयं को जानता है ना क्रोध दूसरे को जानता है। हमने तो जीव का लक्षण क्या नक्की किया, ज्ञान दर्शन, क्रोध में ये लक्षण नहीं है। यही कहते कि राग द्वेषादि विकारी परिणामों पण वास्तव में आत्माना ज्ञान लक्षण थी भिन्न छे, कारण के राग द्वेषादि भावो क्षणिक अने आकुलता लक्षण वाला छे, ते स्व पर ने जानता नहीं, ना वो अपने को जानते हैं ना पर को जानते हैं। जारे ज्ञान स्वभाव, तो अभी अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट एक बाजू राग को बताया, अभी ज्ञान कैसा है, ज्ञान स्वभाव तो नित्य ने अशांत अनाकुल छे। ज्ञान हमारा स्वभाव है, एक ज्ञान में कोई आकुलता नहीं, ज्ञान तो नित्य है, वो अनाकुल है। स्व पर ने जानवानो तेनो स्वभाव छे, ज्ञान कैसा है तो जानना उसका स्वभाव है, जो स्वभाव है उसमें कोई मर्यादा नहीं होती है। किसको जानेगा, स्व को भी जानेगा पर को भी जानेगा। कितने चीजों को कोई लिमिट होगी ना, कोई लिमिट नहीं है। स्वभाव ही उसको कहते हैं जो अमर्यादित होता है, स्वभाव ही उसको कहते हैं जो स्वयं सिद्ध होता है। अभी हम पंचाध्याय में कहते हैं ना, किसी ने बनाया नहीं होता है, स्वभाव तो होता है, अनादि से होता है, अनंत काल तक रहता है, किसी ने बनाया नहीं है, वो वस्तु में ही है। और वो एक सदृश होता है, कायम एक रूप होता है, पलटता नहीं है, अमर्याद होता है। ये सारी स्वभाव की विशेषताएं हैं। तो कहते स्वपर्णो जानवानो तेनो स्वभाव छे। तो हमने पूछा था कि ऐसी कोई लिमिट होगी ना, जैसे आप दर्पण लाते हैं बाजार से, मिरर आईना, तो उसमें लिखा होता ना, इसमें 50 चीजें झलकेगी, इसमें 100 ऐसा नहीं होता है। तो रिफ्लेक्टिविटी उसका स्वभाव है, तो रिफ्लेक्ट करते रहे, हाँ दिखेगा। ऐसा नहीं कि ये अच्छे अच्छी चीजों को झलकाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं। आ रीते भिन्न लक्षण द्वारा ज्ञान में आत्मा रागाधिक थी भिन्न छे एम नक्की थाई छे। देखो कितना आसान तरीका बताया है, हमें अपना स्वरूप जानना है। तो मैं कौन हूँ, तो जीव द्रव्य हूँ। मेरा लक्षण क्या है, तो ज्ञान दर्शन। तो अपने में जानना हो रहा है, ये तो हर एक चीज के अनुभव की बात है, उसको पूछना नहीं पड़ता बाजू वाले की मैंने ये जाना कि नहीं जाना। अपने को भूख लगी, रोना आया, जो कुछ क्रोधमान माया, ये सब जान रहे हैं हम। तो कहते कि ये आत्मा को हम ज्ञान, आत्मा यानी मैं कौन हूँ, तो ज्ञान मैं हूँ। ये रागादिक से भी मैं भिन्न हूँ, पहले शरीर आदि से भिन्न बताया, वो तो अचेतन है, पर ये राग तो जीव की पर्याय में हो रहा है, फिर भी विकार है, क्षणिक है, दुखमय भाव है, और मैं तो स्वभाव भाव मेरा तो ज्ञान है, जो अनाकुल स्वभाव वाला है, शांत स्वभाव वाला है। इसलिए जो भिन्न लक्षण के द्वारा ये हमने नक्की किया कि मैं भिन्न हूँ, ये रागादि और ये शरीर आदि सब भिन्न है। नीचे लिखा है देखो, चार आंकड़ा, जीव बंध बने नियत निज निज लक्षणे छेदाय छे, प्रज्ञा छिणी थकी छेदता बनने जुदा पड़ी जाय छे। ये समय सार गाथा 294। इन्हें जीव और जो बंध है, वो दोनों नियत यानी निश्चित अपने अपने लक्षण के द्वारा छेदे जा सकते हैं, वो जुदे जुदे पहचाने जा सकते हैं। प्रज्ञा छिनी, छिनी समझते ना, कभी देखिए क्या पर नहीं है, छिनी क्या होती है, कभी देखिए। हमने तो बचपन में देखे, हमारे पिताजी वो तो लकड़ी फोड़ते थे, वो छिन्नी ऐसी होती है, एक लोहे की ऐसे, उसके ऐसा होता है थोड़े पट्टी जैसी, उसके इतना पॉइंट होता है और ऊपर जाड़ी होती है और ऊपर ऐसा गोल होता है, उसमें हथौड़े से ठोकते हैं, तो हाँ ठोकते हैं, हाँ तो यहाँ ऐसे डालते हैं और ऊपर से ठोकेंगे तो उसके दो फाले हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर भी ऐसे फोड़े जाते हैं, तो उसकी एक सांध होती है, जॉइंट उसका, वहाँ पर अगर डाल के पूरे स्लैब के स्लैब ऐसे अलग हो जाते हैं। वो भी टेक्निक होती, कहाँ डालना क्या। तो कहते हैं प्रज्ञा छिनी, ये हमें तो प्रज्ञा रूपी छिनी, बुद्धि रूपी छिनी के द्वारा राग को और ज्ञान को हम जुदा जुदा कर सकते, बनने जुदा पड़ी जाए छे। जो जुदा है वो जुदा कर सकते, जुदा हो जाता है कैसे, लक्षण के द्वारा। माटे आत्मा परमार्थे परभावो थी, अर्थात शरीरादि बाह्य पदार्थों थी तथा राग द्वेषादि अंतरंग परिणामों थी। परभाव में दो लिए, पर पदार्थों के भाव वो तो परभाव है ही है, परंतु अपने में उठने वाले जो रागादि ये अंतरंग परिणाम है उसको भी परभाव कहा, विभाव भाव को भी परभाव कहा। विविक्त छे एटले भिन्न छे, क्योंकि विविक्त आत्मा का स्वरूप कहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा यहाँ आचार्य ने की है, तो ये किससे विविक्त है उसकी बात यहाँ बताई। नहीं नहीं, राग राग तो है ना, पर्याय में है, जो है उससे भिन्न करेंगे कि नहीं है उससे भिन्न करेंगे। जैसे अन्यमति कहेंगे मैं ही हूँ बाकी सब माया है, ऐसा तो नहीं है। राग राग का अस्तित्व है कि नहीं है, बिल्कुल ना 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 ना।
देखो देखो यहाँ बात ऐसी है कि अज्ञानी जीव ये राग मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, ऐसा मानता है। जनरली देखो कई लोग ऐसा भी कहते हैं, देखो भैया अभी तुम बीच में बोलना नहीं, मैं गुस्से में हूँ, फिर आपका अपमान हो जाए तो मुझे मत पूछना। इसका अर्थ ये होता है कि मैं अभी राग रूप प्रवर्त रहा हूँ, मैं राग रूप हूँ, ऐसा ही वह मानता है। कई लोग ऐसा भी कहते वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभावी हूँ लेकिन किसी ने मेरा सुना नहीं ना तो फिर देखो क्या होता है, यानी वो अपना स्वभाव मानता है। और यहाँ जब हम ज्ञान से राग को जुदा करते हैं यानी उसको कहीं उठा के फेंक थोड़ी देते है, पर उससे मैं जुदा हूँ, उस रूप में नहीं हूँ, ये प्रज्ञा छिनी का काम है।
देखो वो है ही नहीं, ऐसा नहीं लेना कभी। जीव की पर्याय में विकार है कि नहीं है, यदि विकार होता ही नहीं तो हम अभी वर्तमान में ही सिद्ध कहलाते।
नहीं, मैं कह रहा हूँ जीव की पर्याय में कहेंगे या जीव की पर्याय ही विकार रूप है।
ये पर्याय में विकार कहो या पर्याय विकार रूप पर्याय हो रही है कहो, एक ही बात है, उसमें कोई जुदी बात नहीं है। जीव अभी अवस्था में क्या है वहाँ राग द्वेष चल रहे हैं, क्या उतनी अवस्था है, क्योंकि ज्ञान की भी अवस्था चल रही है, ज्ञान की भी अवस्था हो रही है, राग की भी। पर हमने इन्हें मिथ्यात्व अवस्था में अज्ञानी क्या मान लेता है, ज्ञान और राग की भिन्नता पहचाननी नहीं जाती, तो मैं उस रूप है मान, यानी मैं ज्ञान ज्ञान वाला भी हूँ क्रोध वाला भी हूँ ऐसा सब मानता है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा समझा है उन्होंने। वहाँ कौन कौन है, एक तो जीव द्रव्य है, एक पुद्गल शरीर आदि, दो बातें हुई ना, पार्टी नहीं ना इधर है, यानी उसमें मैं पहचानने में क्या घोटाला कर दिया। एक तो आत्मा है और यहाँ शरीर है, दो भिन्न चीजें हैं। आत्मा की अवस्था क्या हो रही है, ज्ञान, वो अभी हीन रूप पर भी फिर भी हो रहा है, जानने का कार्य चल रहा है, और क्रोधादि हो रहे हैं, ये विभाव भाव है। और शरीर की क्या, उसके गुण तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसकी अवस्थाएं, यानी वो स्पर्शादि उसकी अवस्थाएं है, जैसे ठंडा गर्म जो कुछ हो रहा है ये सब अवस्था में ही लेना। अब इस जीव की मान्यता में क्या कर रहे, वो तो मैं कौन हूँ, कोई तो अज्ञानी बस इसी को मैं मान रहे हैं, परंतु जिसने आत्मा है वगैरह स्वीकार किया वो सब मिलकर मैं हूँ मान लिया है। कोई कहता तो शरीर से मैं भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न कहने वाले भी क्रोधादि और ज्ञान मिलकर मैं हूँ मान लेते हैं, क्योंकि शरीर से भिन्न तो अन्यमति भी कहते हैं, पर उनके ये क्रोधादि से ज्ञान की भिन्नता उनके ख्याल में नहीं है, ना उनके मालूम है, कुछ सुनी भी नहीं उन्होंने। तो ये है, देखो भेद ज्ञान है ना, भेद करना, भेद से जाना, लक्षण के द्वारा हम जानेंगे। ये ज्ञान दर्शन लक्षण है हमारा, हमारा स्वभाव है, और ये पर्याय में है, ये दुख रूप भाव है और ये हमारा सुख रूप भाव है। दोनों को मिलाकर यदि हम उसको नहीं पहचाने तो हम दुख रूप ही अनुभव कर रहे हैं। तो जय जैसा है तो ये स्वभाव भाव, इसमें अपने मैंपना स्थापित करना है। इसको भी जानेंगे, इसको भी जानेंगे, ज्ञान सबको जानेगा परंतु उसको भिन्न पहचानेगा तो इसमें मैंपना स्थापित होगा ज्ञान में, परंतु इसका अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है। यदि उसका अस्तित्व ही नहीं मानेंगे तो अभी हमको सुखी मानना पड़ेगा। यदि ये दुख क्यों खड़ा किया तो हम कहेंगे कल्पना में खड़ा किया है, ये इष्ट अनिष्ट पना उसने कल्पना में खड़ा किया, परंतु वो एक्चुअल में क्रोधी मानी माया ये लोभी हो रहा है। मिथ्या तो कभी अस्तित्व है, भ्रांति भी है, भ्रांति जैसी वस्तु नहीं है परंतु भ्रांति है, ख्याल में ना? वस्तु हाँ, वो जैसा सोचता है वैसा वहाँ रियलिटी नहीं, परंतु वहाँ राग की विद्यमानता है, मिथ्या तो की विद्यमानता है वहाँ पर। अगर उसी को नहीं होते तो कोई गुणस्थान नहीं बनते, जीव दुखी नहीं होता, जीव की संसार अवस्था नहीं होती, नया कर्म का बंध नहीं होता। समझ में आती है बात? वो है, पर्याय में है, होने दो, उससे भिन्नता पहले पहचानिए। देखो सारा जगत या इवन जैनी भी कोशिश किसकी होती है, राग द्वेष कम करो, और वो भी कौन सा राग द्वेष दिखता है, क्रोध। हाँ, तो क्रोध कम करो, बस हमने धर्म किया ये समान। ये कुछ शुभ भाव करो, शुभभाव भी नहीं, क्रियाएं, कुछ क्रियाएं करो तो हमने धर्म किया ऐसा मान लेता। परंतु ये शुभ या अशुभ जो कुछ परिणाम हो रहे हैं उससे मैं भिन्न हूँ ये बात वो भूल जाता है तो उसका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। मुख्य बात तो वहां से शुरू होती है। तो ये कुछ क्रियाएं पलट कर मैं कुछ अलग क्रियाएं करूँ जो शुभ भाव वाली, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा ऐसा सोचता है, ये उसकी मिथ्या मान्यता है। यानी इतना सरल है, देखो मार्ग तो इतना सरल है, अपने में रागादि हो रहे हैं, अपने ख्याल में आ रहे हैं, तो मैं तो जानने वाला हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा लक्षण है और ये भिन्न लक्षण वाले हैं, ये मेरे से जुदे है, इतना नक्की करना है। वो अभी है पर्याय में, रहने दो, शरीर है अभी, वो तो रहेगा ना, उसको कौन बाहर करेगा, पर पदार्थ है, सब तो अपने अपने में है। हमें तो लक्षण के द्वारा भिन्नता की पहचान करनी, बस इतना ही करना है, उतना ही रह जाता है, बाकी सब कुछ करना चाहता है।
यहाँ तो यही बात है कि जो पर पदार्थ है, जिसको पर कहा जाता है, वो साथ में रहने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको अपने रूप मानने में तकलीफ है। देखो शरीर तो 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकरों को क्या, केवली भगवान को भी होता है, अरिहंतों को भी होता है शरीर, और जो कषाय है मुनिराजों की भी कषाय होती है, फिर भी 3 कषाय के चोकड़ी का अभाव है, फिर भी उनके 1 कषाय बाकी है। यानी हम सम्यक दृष्टि जो जीव है वो इन सब बातों से मैं जुदा हूँ, ऐसे उनकी खातिरी हो गई है कहो, या उनका निश्चय हो गया कहो, वैसे उनकी प्रतीति है, ज्ञान है, और वो इन सब से अपना आत्मा जो जिस स्वभाव का है उसका अनुभव उनको है। यानी ये होते हुए भी सब चल रहा है, और हम किसी को दूर करना चाहते हैं, दूर करना ये तो कहने की बात है, समझने के लिए, क्योंकि पर को तो हम कुछ कर नहीं सकते ना भाई, अभी देखा ना शरीर को कहाँ हटा सकेंगे हम, फिर भी उससे जुड़े हैं। हमारी तो ऐसी अवस्था है कि घर के सारे जो कुछ हमारी माल मिलकत है उससे जुदा होना बोले तो तकलीफ होगी। ये कल आया था ना सिकंदर, क्या किया कर दी, कल बात चली ना,
कल शाम उसने बात आई,
जब तक पता नहीं लगा तो आखिर में लगा,
ऐसा ही होता है, आखिर में ही लगता है। रात भर सपने सच लगते हैं, सुबह वो ख्याल में आता है अरे मैं अभी जाग गया हूँ, रात भर परेशान हुआ था, जैसे कोई ट्रेन पकड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ भी होते, परीक्षा में गया है, पेपर है, वहाँ तो परेशान परेशान होते हैं। सुबह उठने पर लगता है अरे ये सब मूर्खता थी मेरे, ऐसा ही पूरे हमारा जीवन बर्बाद करते हैं पैसों के पीछे, बच्चों के पीछे, जो कुछ है अन्य अन्य कल्पनाएं करके उसके पीछे। मरण नजदीक आता है तो बेकार का लगता है कि अरे मैंने कहाँ कहाँ टाइम खो दिया है, जो करना था वो रह गया है। क्योंकि कितना भी करो तो इसमें से तो कुछ क्या किया, पाप पुण्य के जो कुछ कुछ फल है उसको भुगते रहा और माना कि मैंने इतना सब खड़ा कर दिया, इतना किया, ये और नया मिथ्या तो इसके और बंद करके दिया। तो ये जो अभी हमने पहले तो आगम में आत्मा का स्वरूप बताया था, अब ये अनुमान से भी हम नक्की कर रहे हैं, क्योंकि लक्षण के द्वारा हम नक्की करेंगे ना। अब अनुभव की बात करते हैं। आगम अने युक्ति द्वारा, पहले आगम से जानना, देखो इसको भी जानना कहेंगे, हमें आत्मा को जानना है, पहले आगम से जानेंगे, क्योंकि भगवान ने जिस आत्मा का जैसा स्वरूप कहा है, सभी पदार्थों का, सभी द्रव्यों का, यानी आत्मा का स्वरूप कहो, उसकी परिणमन व्यवस्था करूँ, कौन एक द्रव्य दूसरे करता है कि नहीं, ये सभी जो सिद्धांत है वो हमने आगम से जाने, फिर उसमें अनुमान से हम नक्की करेंगे, जो हम जानते हैं हमारा तत्व निर्णय, उसको कहेंगे युक्ति और आगम से, अनुमान से जानना। अब कहते अनुभव की बात है। आगम अने युक्ति द्वारा आत्मानु शुद्ध स्वरूप जाने, यानी यहाँ तो हमने आत्मा संबंधी नक्की किया, जान लिया, आगम से जानने को भी जानना कहेंगे, अनुमान से जानने को भी जानना कहेंगे। हमने अनुमान किया कि यहाँ ज्ञान हो रहा है, मेरे को पता चल रहा है कि पंखा घूम रहा है, हाँ घूम रहा है, अब कुछ बाहर बारिश आ रही है, हाँ आ रही है, हवा ठंड लग रही है, हाँ लग रही है, ये सबको जान रहे ना, तो ये है नक्की है आत्मा है कि नहीं है, होगा अभी इतने आचार्य कहते हैं तो, अरे पर ये नक्की किसने किया, ये तो ये है वो है वो है, बताने वाला कौन है, नक्की किसने किया, जाना किसने, तो वो मैं हूँ। तो कहते इसको भी जानना कहेंगे, ये तो हमने अनुमान लगाया है, इसको भी जानना कहेंगे, परंतु आत्मा को जानना यानी उसका अनुभव करना, पहले तो वो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, यानी अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा, तो हम कहेंगे आत्मा को जाना। अभी तो हमने आत्मा संबंधी जाना, आत्मा है ये अनुमान के नक्की किया है? तो कहते हाँ,
आगम और युक्ति द्वारा आत्मा का शुद्ध स्वरूप जाना, ये विकल्पात्मक जानना है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो विकल्पात्मा है, अभी हम निर्णय के प्रति पहुंचने के लिए ये जो कुछ बातें हैं उससे हमने जाना, नक्की किया। तो आगम अने युक्ति द्वारा आत्मानु शुद्ध स्वरूप जानी, पोताना त्रिकाल शुद्धात्मानी सन्मुख थता। ये कैसा है, हम त्रिकाल शुद्ध है, तो कहते हम तो इतने रागी द्वेषी है ना, कहाँ शुद्ध है, क्योंकि कोई कहते ना मैं तो शुद्धात्मा का वो शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ, तो टोडरमल जी साहब पूछते हैं तू कैसा है, तू तो शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। द्रव्य किसको कहते हैं, गुण और पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। गुण तो सभी एट ए टाइम विद्यमान है, पर्याय एक के बाद एक होती है, अनादि से निगोद से निकला है और सिद्ध दशा तक पहुंचेंगे हम, तो निगोद से लेकर सिद्ध तक की सभी जो पर्याय है, जो कहीं ज्ञान की क्रोधमान मायालोभ की जो कुछ हो रही थी वो सब उस द्रव्य में इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो द्रव्य को शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड कहा है। तो आप शुद्ध 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 कह रहे हो, कहाँ से आया शुद्ध, हाँ स्वभाव से जो, हाँ त्रिकाल शुद्धता की बात है ना। देखो शुद्धता भी मैं पहले भी बताई थी, बात तीन बातें बताई थी, जीव कभी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश दूसरे जीव वगैरह किसी रूप होता ही नहीं, यही उसकी शुद्धता है। प्रत्येक द्रव्य अपने रूप से रहता है, पर रूप से रहता ही नहीं है, जीव के लक्षण जुदे है, अन्य द्रव्यों के लक्षण जुदे, यही उसकी शुद्धता है। एक बात शुद्धता की, ये एक बात हुई। पर्याय में शुद्ध होता है तो द्रव्य को भी शुद्ध कहे जाता है, वो दूसरी बात। और तीसरी बात, भेद करने को अशुद्धता कहते हैं, गुणों के भेद किए, पर्यायों के भेद किए, यानी पर्याय है कि नहीं पूछा नहीं, हमने पर्याय को अलग से जुदा भेद करके जानना चाहा, हमने द्रव्य गुण पर्याय का पूरा स्वरूप नक्की कर दिया, क्योंकि द्रव्य क्या मालूम नहीं था, उसके लिए हमने बहुत भेद कर करके समझ लिया। अभी समझने के बाद उसी में उलझे रहे तो कहते अनुभव नहीं होगा। तो क्या सबको गौण करके जाना है ना, अभी जानने के बाद अभी रखो ज्ञान में, अभी किसको, पूरे अखंड द्रव्य को ख्याल में लेना है उसको कहेंगे शुद्ध। अभी उसमें भेद मत करो, अभी तब पूछते पर्याय है कि नहीं, तो आपने वो पर्याय को जुदा करना चाह, यानी आप द्रव्य का भेद करना चाहते हैं। भेद करके वो तो अभी पहले भूमिका हमारी हो गई, हमने जान लिया है भेदों को, क्योंकि हमको नक्की करना है द्रव्य कैसा क्या है, उसके लक्षण वगैरह सब हमने नक्की कर दिए। अब क्या करना है, लक्षण से जान लेना, अभी वो मैं हूं ऐसा अभेद अखंड को लेना है। उसको कहते भेद करने को व्यवहार कहा, और अभेद उसको निश्चय नहीं कहा, शुद्ध नहीं कहा है। ग्यारहवीं गाथा में शुद्ध नहीं कहा है, निश्चय ने नहीं कहा, शुद्ध नहीं कहते हैं अभेद अखंड को। ख्याल में आती है ना बात, और भेद करने को कहेंगे वो अशुद्ध नहीं हो जाता है, उसको व्यवहार भी कहेंगे, उसको अशुद्ध नहीं भी कहेंगे। तो ये शुद्धता के ऐसे अलग अलग, तो यहाँ शुद्धात्मा की बात है, त्रिकाल शुद्ध, अभी कोई उसमें भेद कर, सभी जीव है ना, अखंड है, परिपूर्ण है कि नहीं। अब वो पर्याय बिना कह के पर्याय का रस, अरे पर्याय बिना का कोई द्रव्य नहीं होता है, वो सब कुछ है, कौन सी है क्या है उसकी चर्चा अभी मत करो। जीव द्रव्य है, वो परिणमन वाला है, जो कोई उसका स्वभाव है वो सब उसमें आ गया। अभी उसमें भेद करने का वो काल अपना हो गया, अभी अनुभव का काल है, तो अभी अखंड अभेद को ख्याल में लेना है, उसको त्रिकाली शुद्ध कहा, क्योंकि वो एक अखंड एक सदृशी बताएंगे ना हम उसको। अगर उसमें अगर हम पर्याय की अभी विचार करेंगे तो उसमें तो भिन्नता भी होगी, क्षणिक होगी, अब उसकी चर्चा अब नहीं है। तो कहते आगमने युक्ति द्वारा आत्मानु शुद्ध स्वरूप जानी, पोताना त्रिकाल शुद्धात्मानी सन्मुख थता। हाँ गौण कर दी, गौण कर दी, गौण कर दी, गुणों के गुण है कि नहीं सभी अनंत, अब भेदों को गौण कर दे, सभी है कि नहीं है, अभी है, अभी उसकी चिंता छोड़ो, अभी क्या है, कोई ले जाने वाला नहीं है, सब अपने में है, कौन कौन से सब हमने जान लिया, तो हमारी पूरी संपत्ति जान ली, आह चलो अभी एक है क्या है, बंगली है कि मेरे पास सारी इतना सारा सोना है हमने। हाँ तो देखो बाह्य में तो हमें आनंद आता है, हमने फोन पर सुना कुछ, तुम्हें परीक्षा में इतने मार्क मिले कहो, या तुम्हारे लड़के को लड़का हुआ, जो कुछ है अभी वो तो हमने जान लिया, आनंद आया कि नहीं आया, देखा किधर नक्की किया ना, नक्की किया और आनंद आया, और यहाँ तो नक्की भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ आचार्यों ने इतना स्वानुभव पूर्वक बताया है, और हमको तो नक्की करना है, क्योंकि जानना हो रहा है, इतना लक्षण हमें अपना पता है, तो हमारे वो तो स्वभाव की सामर्थ्य की बात यहाँ ख्याल में लेनी है। ये पहले सिद्ध दशा के वर्णन में उन्होंने बताया ना, जो सिद्ध में है वो मैं हूँ, तो ये उनका जो पर्याय में इतना सामर्थ्य प्रकट हुआ, प्रकट जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, जो सामर्थ्य द्रव्य में है वही पर्याय में प्रकट हुआ है, तो मैं भी इतना सामर्थ्यशाली हूँ, तभी तो उसके सन्मुख होगा, नहीं तो ये किसके सन्मुख हुआ, उपयोग में जिसकी अधिकता लगती है वहां उपयोग जाता ही जाता है, और यहाँ केवल ऐसा बैठना और उपयोग अंदर खींच लेना कैसे जाएगा, वो तो अंधकार दिखेगा क्यों। ये तो जिसकी महत्ता आती है तो अपनी महत्ता आनी चाहिए, तो पहले हमने इतना सारा भेद कर करके जो हमने जाना है तो हमें महत्ता आई है, और हमने बिल्कुल विश्वास है, हमने नक्की किया ना, युक्ति और अनुमान से नक्की कर दिया है, तो अनुमान से हमने नक्की किया, तो अपनी इतनी विभूति कहो, अपना इतना ऐसा स्वरूप, जब आचार्यों के एक एक शब्द ऐसे हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो अंदर से रोमांचित हो जाता, या ऐसा मेरा स्वरूप, तो फिर उसका लक्ष्य हो जाता है। कभी कभी तो ग्रंथ छोड़कर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, ये तो ऐसे ही अनुभव की तो यही तरीका है ना। तो देखो यह क्या कहते हैं कि आगमने युक्ति द्वारा आत्मानु शुद्ध स्वरूप जानी, पोताना त्रिकाल शुद्धात्मानी सन्मुख थता। देखो अभी स्वाध्याय करने वालों के लिए क्या, वो जानने तक रुक गए, आगे की स्टेप रहेगी अपने त्रिकाल शुद्धात्मानी सन्मुख थता। अभी जान लिया है बिल्कुल, उस पर विश्वास, जिसको हम लौकिक विश्वास कहेंगे, ज्ञान की पर्याय, परंतु वो तो हमने नक्की किया नहीं, यही मार्ग है, यही करने योग्य है ना। तो कहते पोताना त्रिकाल शुद्धात्मानी सन्मुख थता, आचार्य ने जे शुद्धात्मानो अनुभव थयो, देखो हमें भी आपको भी अनुभव करना है तो यही मार्ग है। आगम से हम जान रहे हैं, आचार्यों ने इतना हमको बिल्कुल सरल कर कर के एक एक आचार्य ने हमको बताया है। ते अनुभव थी, यानी अभी आचार्य को जो अपना अनुभव हुआ है वो अनुभव के द्वारा ते वो विविक्त आत्मानु स्वरूप बतावा मांगे छे। जिसको ऐसे आत्मा का अनुभव हुआ है, उन्होंने भी पहले नहीं जाना था, अभी जान लिया है, तो उनके सहज रूप से ऐसे भाव आते हैं कि ये बात मैं अन्य भव्य जीवों को जो इच्छुक है उनको बताऊंगा। आचार्य आत्मानु स्वरूप कोने बतावा मांगे छे? तो कहते आत्माना अतीन्द्रिय सुखनी ज जेने स्पृहा छे। ज लगाया यानी उसी की इंद्रिय विषय सुखनी जेने स्पृहा नती, स्पृहा ने इच्छा अभिलाषा, तेवा जिज्ञासु भव्य जीवो नेज आचार्य विविक्त आत्मानु एटले शुद्धात्मानु स्वरूप कहवा मांगे छे। जो जिज्ञासु है उसको ये स्वरूप बताने वाला न मिले ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य भी कहते ऐसे जिज्ञासु जीवों को मैं बताना चाहता हूँ। आ रीते श्री पूज्यपाद आचार्य आगम युक्ति अने अनुभव थी आत्मानु शुद्ध स्वरूप कहवानी प्रतिज्ञा करी छे। कुंदकुंद आचार्य ने भी बताया है ना, ये परंपरा आगम, परंपरा क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ से जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा जो है आगम, उसका सेवन, युक्ति का अवलंबन है ना, यही बात है। और वो गुरुओं की सेवा नहीं, गुरु के उपदेश से जो मिला है। और फिर कहते हैं आप अपने स्वानुभव से प्रमाण करना, केवल हमें बंदा इतने मानना ऐसा भी नहीं, मानना कब कहेंगे हम, आप ये ऐसे ऐसा सुनो ऐसा करो तो आपको अनुभव हो जाएगा, तो उसे प्रमाण करना, तो स्वानुभव से प्रमाण करना लिखा था। तो यहाँ पर भी ये स्वानुभव करके बता रहे हैं किसको, जिज्ञासु अन्य जीवों को। तो आ रीते श्री पूज्यपाद आचार्य आगम युक्ति अने अनुभव थी आत्मानु शुद्ध स्वरूप कहवानी प्रतिज्ञा करी छे। अब ये जो आगे ये श्लोक चार आने वाला है, हाँ उसमें उसके ये जो हेडिंग है उसके लिए ये दो लाइन लिखी है। अभी तो हमको ये जो तीसरा श्लोक है उसको आत्म भावना में से पढ़ना है, दो तीन मिनट है अभी। आप कहाँ, ये जो दो लाइन है ना तो श्लोक चार का हेडिंग है। हाँ देखो हम पढ़ लेते, आत्माना वळी केटला भेद छे, जेथी विविक्त आत्मा एम विशेष कयुं छे, विविक्त आत्मा बताया तो और भी कैसे आत्मा होते क्या, अने ए आत्माना भेदोमां शा वडे कोनू ग्रहण अने कोनो त्याग करवा योग्य छे एवी आशंका करी कहे छे। एने वो आत्माओं के जो भेद है, अभी भेद करना है तो अवस्थाओं की दृष्टि से भेद होंगे उनमें है ना। हाँ अभी आत्म भावना निकालना है, आत्म भावना का 12 नंबर का पेज है जहाँ तीसरा श्लोक लिखा है, मिल गया ना। हाँ अभी वहां से पढ़ते, हवे त्रीजा श्लोक मां श्री पूज्यपाद स्वामी कहे छे के जे केवल सुखनो अभिलाषी छे एवा मोक्षार्थी जीवने माटे हूँ कर्ममल की विभक्त एवा सुंदर आत्मानु स्वरूप कहीश। श्रुते न लिंगे न यथात्म शक्ति समाहितांतः करणे न सम्यक समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तम आत्मानमथाभिधास्ये। शास्त्रकार श्री पूज्यपाद स्वामी कहे छे के हूँ श्रुत थी एटले के कुंदकुंद भगवान वगैरह पूर्वाचार्यों ए रचेला शास्त्रों थी। पूज्यपाद स्वामी के पहले हो गए कुंदकुंदाचार्य आदि, तो उनके द्वारा जो सारे परमागम वगैरह रचे गए उनसे जानकर, तथा लिंग थी एटले युक्ति अने अनुमान थी, यानी आत्मा को लिंग से नी चिन्हों से नी के उसके जो कुछ बताए हैं तो उसके अनुमान से उसको जानना, लक्षण से जानना, અને આત્મશક્તિ અનુસાર ચિત્તની એકાગ્રતાથી સમ્યક પ્રકારે જાણીને એને અપને શક્તિ કે અનુસાર ચિત્ત કી એકાગ્રતા સે આત્મા કા અનુભવ કરકે જાણીને તથા અનુભવીને ભિન્ન આત્માનું સ્વરૂપ હવે કહીશ. ગ્રંથ કી શરૂઆત મેં અરિહંતો ઓર સિદ્ધો કો નમસ્કાર કરકે અભી વો પ્રતિજ્ઞા કરતે હૈ કે મેં ક્યા બતાને વાલા હું. કોને માટે કહીશ? કે જે જીવ કેવળ એને માત્ર સિર્ફ ઓનલી આત્માના સુખનો જ અભિલાષી છે, વિષયોથી પાર એવા અતિન્દ્રિય ચૈતન્ય આનંદની જેને ભાવના છે, કેવળ જ્ઞાનથી થતું જે અનંત સુખ, એના સિવાય બીજા કોઈની જેને સ્પૃહા નથી, આકાંક્ષા નથી, એવા મોક્ષાર્થી ભવ્ય જીવોને માટે હું ભિન્ન આત્માનું સ્વરૂપ કહીશ. અબ યહી રુકેંગે હમ. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો, સો વાણી મસ્તકનમ સદા દેતો.